दिन गुजर गए मेरे, अब मैं क्या करूं, बच गए लम्हात को कैसे जिया करूं, कैसे जिया करूं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन अम्मा बाद فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ। बुजुर्गों का मदनी चैनल देखने वाले नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अब मैं क्या करूं। हदीस पाक का मफहूम है कि मेरा जो उम्मती मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ कयामत में उससे मुसाफहा फरमाऊंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। एक हदीस पाक का मफहूम है, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महव गुफ्तगू थे। दौरान गुफ्तगू ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए बताया गया कि आपके जो ये सहाबी है जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी जिंदगी की बस एक साथ रह गई है, इसके बाद इनका इंतकाल होने वाला है। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात उस सहाबी को बताई, बड़ा मुस्तरिब हुआ जिसको यह बताया जाए कि थोड़ी देर बाद तेरा इंतकाल होने वाला है, उसकी क्या हालत होगी। वो मुस्तरिब हुआ, बेचैन हुआ, तो उसने फौरन अर्ज की, बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए, गोया हमारे प्रोग्राम के नाम की मुनासिबत से अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर अब मैं क्या करूं, जबकि मौत का परवाना अनकरीब आने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म के हुसूल में लग जाओ, इल्म हासिल करने में लग जाओ। वो फौरन मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ और कुछ सहाबा बैठे थे आपस में सीखने सिखाने का सिलसिला था इल्म का, उनके दरमियान बैठ गया। इससे पहले के मगरिब का वक्त होता उससे पहले उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। रावी लिखते हैं कि ये इतना बड़ा मामला है, इतना सादत का मामला है, इतना बरकत वाला ये काम है इल्मे दीन सीखना, कि अगर कोई इससे बेहतर काम होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को उसकी तरगीब दिलाते, उसके बारे में इरशाद फरमाते, यकीनन वो कामयाब थे। हमारा कीदा है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। लेकिन आज के इस मौजू के हिसाब से हमें क्या सीखने को मिला। बुजुर्गों का मदनी चैनल देखने वाले नाजरीन, अब मैं क्या करूं के तहत हमारे यहां जब बुजुर्गों को कोई ऐसी बात समझाई जाती है, कोई सीखने सिखाने का मामला होता है, एक ही जवाब आता है, अब मैं क्या सीखूं। हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के लिए जब तक मौत नहीं आ जाती वो वक्त ही वक्त होता है। किसी ने कहा है ना कि जब खुली आंख हुआ सवेरा, बस इस पर डट जाए, इस पर ना है कि ये बुढ़ापा हो गया है, मेरी उम्र 60-70 साल की हो गई है, अब क्या सीखूं, ऐसा ना करें। उलमा फरमाते हैं कि जब उम्र का ये तवील हिस्सा है ना, इसमें बरकत ढूंढे, यकीन जानिए। हदीस पाक में हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन के लिए ज्यादा उम्र में भलाई है, मोमिन के लिए ज्यादा उम्र में भलाई है। अल्लाहु अकबर। जब ज्यादा उम्र में सरकार फरमाते भलाई है तो आप क्यों रुक रहे पीछे, मैं क्या करूं, अब मैं क्या सीखूं। नहीं, आप सीखें, क्यों, आप सिखाने वालों में से हैं, आप ही सीखने से रुक जाएंगे तो अगली नस्ल को सिखाने का अमल रुक जाएगा। इसको गौर कर दे, जरा तवज्जो दे, आप सिखाने वालों में से हैं। ये ना कहें कि बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बुढ़ापा है, ना। उलमा फरमाते हैं कि देखें, बुढ़ापा जिंदगी का वो हिस्सा है जिसमें बड़े तजुर्बात आपके पास जमा हो गए। हालांकि दो हिस्से होते हैं, एक ऐसा भी होता है कि जिसमें बंदा एक चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई माजूरी मामला हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसे भी तो होते हैं ना जो उम्र की तरफ नजर नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह अमल की तरफ तवज्जो होती है उनकी, उनकी सारा जो फोकस है वो अल्लाह की रजा की तरफ लगा रहता है, वो इस तरफ नहीं जाते। उलमा फरमाते हैं कि गोया बुढ़ापे की दो इकसाम है, एक जिस्मानी और दूसरी जहनी तौर पर। इसमें बड़ा प्यारा जुमला कहा है किसी ने कि जो जहनी तौर पर जवान रहता है ना, तो जिस्मानी तौर पर भी वो जवान रहता है। अगर जहनी कबूल कर ले कि नहीं अब ये सीढ़ियां में नहीं चढ़ सकता, आप यकीन करें हम नहीं चढ़ पाएंगे, वो अगर ये इरादा हो, ये तो चार मंजिला है ना, आठ मंजिल में चढ़ूंगा, वो बंदा चढ़ पड़ता है। एक जहनी तौर पर अगला तैयार होता है, तो इस तरफ जब वो तवज्जो करेगा वो जाएगा। और सीखने का अमल कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होता। यूं भी कहा जाता है कि इस उम्र में बंदे के पास फुर्सत ज्यादा होती है, अब वो जिम्मेदारियां आपकी नहीं रही, वो एक सिलसिला था बस, ठीक है हो गया, सारी जिंदगी कमाने में और घर वालों का ख्याल रखने में लग गई, अब आप घर पर हैं तो इल्मे दीन सीखने का बड़ा सुनहरी आपके पास मौका है, दीन सीखने का मौका है, और इसको लीजिएगा। कैसे लेंगे? उलमा फरमाते हैं कि सीखने का अमल कभी भी रुकता नहीं है। एक बुजुर्ग रात को आराम फरमा रहे थे, अचानक उनके कान में उसके बच्चे की रोने की आवाज आई। आप उठे और देखा कि बच्चा जो है वो रो रहा है, पूछा उससे, बेटा क्यों रोता है, तबीयत खराब है? कहा कि नहीं, असल में कल जुमेरात का दिन है और हमारे कारी साहब जुमेरात वाले दिन पूरे हफ्ते की दोहराई सुनते हैं, पूरे हफ्ते का सबक सुनते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा, और अब वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस बात पर मुझे रोना आ रहा है कि कल जब सबक मुझे सुनाने के लिए खड़ा किया जाएगा और मैं सुना नहीं पाऊंगा तो मेरी रुसवाई होगी हम जमातों के दरमियान, पूरी क्लास में गोया मुझे खड़ा कर दिया जाएगा, और हो सकता है उस्ताद साहब मुझे डांटे भी और सजा भी कोई दे कि क्यों याद नहीं किया। बस उनके इतने अल्फाज का कहना था कि दूसरे ही लम्हे वालिद साहब ने रोना शुरू कर दिया, उनकी आंखों से टप टप आंसू बहना शुरू हो गए। अब बच्चा बड़ा परेशान, कहा कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो सबक नहीं सुनाना। अल्लाह अकबर, बड़ा प्यारा जुमला कहा। बोला बेटा असल सबक सुनाना ही मुझे है ना, मैं उम्र के हिस्से में आ गया हूं कि किसी भी लम्हे मौत का परवाना आ सकता है, और बेटा तू तो अपने उस्ताद को सबक सुनाएगा, तू चाहे तो शायद कोई बहाना भी कर ले और उस्ताद को तू कोई धोखा भी दे ले, अगर से देना गलत है लेकिन तू कोई ना कोई ऐसी बात करके अपने उस्ताद को फरेब मिलाकर आगे पीछे कर सकता है, लेकिन मुझसे मेरा रब एक हफ्ते का हिसाब नहीं पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा, इस बात ने मुझे रुला दिया है। अल्लाह अकबर, देखे यह है सीखने का अमल, बच्चे की छोटी सी हरकत ने वालिद साहब को सीखने पर मजबूर कर दिया है कि ये रो रहा है, एक हफ्ते का सबक सुनाना है और ये याद नहीं कर सका। सिर्फ क्लास में कितने बच्चे होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे क्लास में बच्चे, लेकिन मुझे तो पूरी जिंदगी का सबक सुनाना है। और वहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक जो इंसान पैदा होगा वो सब के सब वहां मौजूद होंगे, सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे औलिया सब वहां मौजूद, और उनके सामने अगर मैं कामयाब ना हुआ तो ये कितनी बड़ी रुसवाई होगी। ये है वो सीखने का अमल, जो हमारा प्रोग्राम हमें सिखा रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो अब मैं ये करूं कि अपने तौर पर सीखने का जज्बा बरकरार रखूं और कोशिश करूं उस हदीस पाक की तरफ मेरी नजर जाए जिसमें कहा गया था कि फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। आप कहें जी उम्र तो गुजर गई हमारी, वही बात, अब मैं क्या सीखूं, तो ऐसा नहीं है। एक और अल्फाज भी इसी के अंदर, एक जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। आप हयात हैं, आप जिंदा हैं, और जिंदा ही से तो सीखा जाता है। कोशिश करें, हिम्मत करें कि रिवायत का मफहूम है, अल्लाह तबारक व ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, रब जिससे भलाई का इरादा फरमाए उसे दीन की समझ बूझ अदा कर देता है। इसमें उम्र का तकाजा तो नहीं है ना कि बचपन में हो, जवानी में हो, किस उम्र में हो, अल्लाह तबारक व ताला जिस पर करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी बड़ी बरकतें हैं। कैसे? हजरत सैयदना कबीसा बिन मुखारिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए कबीसा कैसे आए हो? तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, हड्डियां भी नरम हो गई हैं, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मुझे कोई ऐसी चीज बताएं, कोई ऐसी चीज सिखाएं जो मेरे लिए मुफीद हो। देखिए प्रोग्राम का नाम इसमें नहीं है लेकिन है तो यही ना, उम्र ज्यादा हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई, नरम पड़ गई हैं, अब मैं क्या करूं, ये हमारा प्रोग्राम। और वो क्या फरमा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई ऐसा सिखाइए जिससे मैं फायदा उठा सकूं। सरकार मदीना राहते कल्बोसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कबीसा तुम जिस पत्थर या दरख्त के करीब से भी गुजरे उसने तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार किया। उलमा फरमाते हैं कि गोया इस रिवायत के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इल्म हासिल करने की जानिब मुतवज्जो कर रहे हैं। क्यों? कि जो इल्म हासिल करता है वो जिस जगह से गुजरता है, यहां तक कि फरिश्ते भी उसके लिए अपने है ना बाजू बिछा दे देते हैं, पर बिछा देते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि उसके इल्म की बरकत है कि गोया जब वो जहां जहां से गुजर रहा होता है उसके लिए शजर और हजर इस्तिग़फ़ार करते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। हमने सारी जिंदगी गुजार दी, अगर इल्म नहीं सीखा तो अब भी तो हमारे पास वक्त है, जिस कदर मुमकिन हो हम अपने इस आखिरी उम्र के हिस्से को कारआमद बना सकते हैं, भलाई का हिस्सा बना सकते हैं और इसमें रोजाना कुछ ना कुछ दीन सीख सकते हैं। याद रखिएगा हमारी ये जो बड़ी उम्र है ये बरकत वाली होनी चाहिए, ये माज़ल्ला इस उम्र में आके गुनाहों वाली नहीं होनी चाहिए, ये सादत वाली होनी चाहिए, मासियत वाली नहीं होनी चाहिए। और ये कब होगा? हम जब दीन पर अमल करने वाले होंगे इंशाअल्लाह। और वैसे भी कहते हैं कि इंसान हर वक्त इल्म का मुतलाशी रहता या उसे रहना चाहिए कि इसके लिए कोई जगह की किसी उम्र की कैद नहीं होती, हत्ता के बंदा बूढ़ा हो और सामने वाला बिल्कुल भरी जवानी में है वो उससे इल्म हासिल कर सकता है। हमने देखे ये मनाजिर, पढ़ने वाला जो है मदरसतुल मदीना बालिगान, रात को इशा के बाद जो हमारे मसाजिद में होते हैं, दावत इस्लामी की फयूद और बरकात में से एक बहुत बड़ी बरकत ये भी है, इशा की नमाज के बाद कुरान पाक का सिलसिला सीखने सिखाने का होता है, तो उसमें जो पढ़ने वाला है वो 60 और 70 के दरमियान में, लेकिन जो सिखा रहा है, जो कारी साहब पढ़ा रहे हैं वो 20 और 22 के दरमियान में है। तो इसमें भी कोई शर्म वाला मामला नहीं होना चाहिए। ये कितनी बड़ी दौलत है इल्म। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु بازار تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا تم یہاں موجود ہو اور مسجد کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وراثت میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہ لوگ فوراً مسجد کی جانب چل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوئے، حضرت ہم نے تو وہاں کوئی میراث تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی کہ میراث تقسیم ہو رہی ہو. پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ علم سیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہی تو رسول پاک کی میراث ہے، یہی تو میراث ہے، یہی تو علم ہے جو تمہیں سیکھنا چاہیے. اور علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے. یہ بھول جائیں اس وقت ہماری عمر کتنی ہے، سیکھنے کا جذبہ رکھیے. جیسے ایک نوجوان تھے اور اس وقت معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ایک انسان میں ہو سکتی تھی وہ سب اس کے اندر تھی، بھری جوانی تھی، ہڈیوں میں طاقت تھی. اب وہ شراب نوشی، بدکاری، ڈاکہ زنی، یعنی کون سا فعل تھا جو اس نوجوان میں نہیں تھا، سب میں ملوث تھے. اللہ تبارک وتعالیٰ نے کرم کیا، زندگی کا کوئی حصہ موڑ آیا جس میں یہ کسی بزرگ سے وابستہ ہو گئے. اور بزرگوں سے وابستگی یہ الحمدللہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ایک بزرگ سے وابستہ ہوئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مرید ہوئے اور نہ صرف توبہ کی بلکہ یعنی معافی اور تلافی، جن جن کے حقوق غصب کیے تھے ان سب کے حقوق ان تک پہنچائے، یہ ممکن نہ ہوا تو ان سے معافی حاصل کر لی، یعنی ایک بہترین نوجوان بن گئے، عابد بھی بن گئے، زاہد بھی بن گئے، عبادت گزار بن گئے. ایسے عبادت گزار بنے گویا اس کے چہرے پر عبادت کا نور نظر آنے لگا. ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. دوسرے کے ماضی کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنے حال کے گناہ نظر نہیں آتے. ارے بھائی وہ ماضی کا معاملہ تھا، ختم ہو گیا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہی نوجوان اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے اور مسلسل رو رہے تھے، ایسا مطلب دل دکھا ہوا تھا ان کا کہ آنسو بہا رہے تھے. انہوں نے قریب کیا، پوچھا کس چیز نے رولایا ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا حضور آپ اس بات کے گواہ کہ میں نے توبہ کی ہے. بولا میں گواہ ہوں تو نے توبہ کی ہے؟ بولا آپ اس بات کے گواہ کہ اب میں گناہ نہیں کرتا. بولا گناہ نہیں کرتا، جتنا مجھ سے ممکن ہے میں دین پر عمل کر رہا ہوں. بولا میں دین پہ عمل بھی کر رہا ہوں. کیوں روتا ہے؟ بولا جب میں آج بھی، اتنے سال ہو گئے مجھے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے، آج بھی جب میں بازار جاتا ہوں تو لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں، آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں. یہ وہی ہے نا، یہ وہی ہے نا، یعنی وہ گناہ، پرانے والے گناہ یاد دلاتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی مجھے اب بھی اسی مقام پر رکھ کر یہ تصور کرتے ہیں، بولے اشارے کرتے ہیں، کنایوں میں باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات تو گفتگو بھی ہو جاتی ہے. اب یہ بڑا پتنی کیا بن گیا، ورنہ میں بتاؤں یہ کیا کیا کرتا. اللہ اکبر، دیکھیں یہ رو رہا تھا، اس کی گفتگو ختم نہ ہوئی. وہ ایسے متبع شریعت تھے، شریعت پر عمل کرنے والے بزرگ تھے ان کے پیر صاحب، انہوں نے رونا شروع کر دیا. اب وہ ہچکیاں باندھ کر رونے لگے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، وہ رونے لگ گئے. اب ان کو نے دیکھا کہ یار میری وجہ سے میرے پیر صاحب رو رہے ہیں، کون سی ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی. بولے حضور ٹھیک ہے میں نہیں رو رہا ہوں، آپ تو نہ رو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا جملہ کہا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نعت کے اندر بھی ایسا شعر ہوتا ہے، پوری نعت کی جان ہوتی. ایسے ہی باتوں کا ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے بیان کی جان بن جاتا ہے، اگر اللہ کرے یہ ہماری سمجھ میں آ جائے. کہا کہ بیٹا تو اس لیے رو رہا ہے कि तू नेक है लेकिन तुझे लोग अब भी गुनाहगार समझते हैं, बदकार समझते हैं, और तू इस पर आंसू बहा रहा है कि मैं जब बाहर जाता हूं लोग आज ही मुझे मेरा माजी याद करते हैं, अल्लाह अकबर। और बेटा मैं इस बात पर रो रहा हूं कि यहां मुझे लोग नेक समझते हैं। रोज़े मेशर अगर मेरे ऐबों का पर्दा खुल गया और मेरी रुसवाई का सामान बन गया तो मैं क्या करूंगा? कैसा जज्बा था सीखने का। देखिए अपने मुरीद के रोने की वजह से भी उनको सीखने का जज्बा मिल रहा है, ये है नेक, लेकिन इस पर आंसू बहा रहा है कि मुझे गुनाहगार समझा जा रहा है। और वो पीर साहब इस बात पर रो रहे हैं कि यहां मुझे नेक समझा जा रहा है, लेकिन रोजे मेशर अगर मेरे गुनाहों का पर्दा चाक हुआ और खुदा न खास्ता मेरी रुसवाई का सामान बन गया तो मेरा क्या बनेगा? तो अगर सीखने का जज्बा हो ना, अब मैं क्या करूं, यह हमारे प्रोग्राम का नाम है, लेकिन इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अब मैं क्या करूं? मैं वो हर काम करूं जिसमें मेरा रब मुझसे राजी हो, जिसमें मेरी जिंदगी के कुछ लम्हात रह गए हैं, बेशक चले आज ज्यादा उम्र गुजर गई है, लेकिन जितना मुमकिन हो सके मैं अपने आप को संभालूं। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया। हजरत सैयदना मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुढ़ापे की वजह से बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन आप अपनी इबादात में, रियाजात में, मुजाहदात में कमी ना ला दे दे। आखिर लोगों ने कहा, हुजूर कुछ कम कर दे, इतने नवाफिल पढ़ना, इतने रोजे रखना आपकी उम्र का तकाजा है। अल्लाह अकबर, आपने इरशाद फरमाया कि तुम जब घुड़सवारी करते हो और किसी घोड़े को बेचते हो ताकि वो मतलब उसमें मुकाबले में हिस्सा ले, तो क्या उस घुड़सवार को बोलते नहीं हो कि तेज कदम से चलना, अपने घोड़े को तेज दौड़ाना, और जब जीत का निशान नजर आने लगे, विक्ट्री स्टैंड नजर आने लगे, विक्ट्री साइन नजर आने लगे, तो घोड़े को एड़ लगा के और तेज दौड़ाना ताकि कोई तुझसे सबकत ना ले जाए। समझाना ये चाह रहे थे उन अपने मुरीदों को, शागिर्दों को, कि तुम मुझसे ये कहते हो उम्र ज्यादा हो गई है, मुझे कुछ कमी करनी चाहिए, और मेरा जमीर मुझसे कहता है कि और ज्यादा इसमें इजाफा होना चाहिए। क्यों? अब आगे मौत का निशान नजर आ रहा है, उम्र के हिस्से में आ गया हूं, अब इसके आगे कुछ और है ही नहीं। बुढ़ापा 70-80 साल, अब आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इबादत ही करनी है मुझे। और यह भी याद रखिए, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा जवानी में अपने आजा को गुनाहों से महफूज रखता है, पाकीजा सोच रखता है, बुढ़ापे में अल्लाह तबारक वताल उस पर निगाह करम फरमा देता है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि 100 साल से ज्यादा उम्र थी उनकी, लेकिन चेहरे पे हशाश बशाश और जवानों की तरह चलते थे, इबादत भी रियाजत भी करते थे। किसी ने इसकी वजह पूछी तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने जवानी में अपने आजा को, अपने जिस्म को, अपने मामलात में अल्लाह की नाफरमानी से रोक रखा था। अल्लाह की नाफरमानी के मामले में बड़ा मैंने एहतियात की थी और उनको महफूज रखा था। तो रब का करम देखे, इतनी उम्र होने के बावजूद भी अल्लाह ने मेरी आज़ा को मेरे लिए महफूज कर दिया है। वही मामला है जो जवानी में। इसी तरीके से उलमा इरशाद फरमाते हैं कि बिलखसूस अपने कुरान पाक की तरफ तवज्जो फरमाइए। अगर कुरान पाक सही पढ़ना इस उम्र में भी नहीं आया तो कहां जाएंगे? और ये फर्ज आयन है। इतनी किरात कि जितनी नमाज बंदा किरात करता है उसे सही तरह पढ़ना है उसको। इसके ऊपर दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहेंगे, इंशाल्लाह 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 बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे ये आखिरी अयाम बरकत वाले होंगे, रहमत वाले होंगे, सआदत वाले होंगे। कब? जब हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उम्र का हिस्सा कोई भी हो, अल्लाह तबारक व तआला बस हमें अपनी रिजा वाले कामों में मसरूफ रखे। आमीन या रब्बल आलमीन, बिजाह खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दिन गुजर गए मेरे, अब मैं क्या करूं, बच गए लम्हात को।